अध्याय कमरे की दीवारें। जब मन की आवाज दबा दी जाए। शाम 6:10 बजे, हॉस्टल कमरा नंबर 204, यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल। कमरे का दरवाजा धीमे से खुला। बाहर से आती हल्की धूप अब गुमसुम सी दीवारों पर रेंग रही थी। अनन्या अंदर आई, उसके कंधे कुछ झुके हुए थे और चाल में थकान नहीं, कोई भारीपन था, जैसे वो कुछ ढो रही हो, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर से तोड़ता रहता है। उसने बैग नीचे रखा, चुपचाप जूते उतारे और बालों की पिन निकालकर उन्हें खुला छोड़ दिया। हवा में उसके बाल हिले, मगर चेहरा वहीं स्थिर रहा, बिना किसी भाव के। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे हॉस्टल का लॉन था, जहां कुछ लड़कियां बैठे बैठे हंस रही थीं। किसी के मोबाइल से कोई पंजाबी गाना हल्की आवाज में सुनाई दे रहा था, लेकिन इन सबके बीच अनन्या जैसे किसी और ही दुनिया में थी। पीछे रिया अपने बिस्तर पर बैठे उसे देख रही थी। हाथ में उसकी नोटबुक थी, पर पन्ने पलटना जैसे रुक चुका था। अनन्या, कोई हलचल नहीं। रिया ने एक सांस ली, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, तुम जाओगी आज घर? अनन्या की आंखें अब भी खिड़की के बाहर थीं, जैसे वो उस सवाल को सुन तो चुकी थी पर जवाब देना उसके लिए जरूरी नहीं था। रिया फिर बोली, मतलब आंटी ने बुलाया है ना डिनर पे? इस बार अनन्या के शरीर में एक छोटी सी हरकत हुई, जैसे कोई बहुत हल्का झटका भीतर से आया हो। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और रिया की तरफ देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन वो शारीरिक नहीं थी। वो थकान उन सवालों की थी जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनका जवाब अब किसी के पास नहीं बचा। बिल्कुल नहीं, वो दो शब्द थे, लेकिन उनमें जितनी दृढ़ता थी उतनी ही एक चुभन भी थी। रिया ने चौंक कर देखा, पर उन्होंने बुलाया है ना, अब थोड़ा तो। उन्होंने कहा है इसीलिए मैं चली जाऊं, अनन्या ने उसकी बात काट दी। फिर उसकी आवाज में तलखी आ गई, वो तलखी जो शब्दों से ज्यादा चुप्पियों से बनती है। ऐसा कोई सौदा थोड़ी है ये, जैसे कोई उधारी चुकानी हो। उन्होंने कहा और मैं चली गई, इतनी ही आसानी होती तो। वो अचानक चुप हो गई। रिया की आंखें उसकी पीठ पर टिक गईं, उस पीठ पर जो शायद बचपन से ही बोझ उठाती आई थी पर कभी चीखी नहीं थी। अनन्या ने कुछ देर बाद खुद ही फिर से बोलना शुरू किया, वो घर घर नहीं है रिया, वो एक पागलखाना है। रिया का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। एक ऐसा पागलखाना, अनन्या की आवाज अब थोड़ी तीखी हो चुकी थी, जहां लोग पागल नहीं होते, उन्हें बना दिया जाता है, धीरे धीरे, रोज, हर बात पर, हर सांस पर। वो पलटी पहली बार पूरी तरह रिया की तरफ। तुम्हें पता है वहां कितनी बातें होती हैं जो मुझे करनी होती हैं लेकिन मैं कर नहीं सकती, और कितनी बातें होती हैं जो मुझे कहनी होती हैं लेकिन कह नहीं पाती? क्यों? क्योंकि वहां हर चीज का एक ढांचा है। ये मत कहो, वो मत करो, ऐसे मत देखो, वैसे मत बैठो, जैसे हम इंसान नहीं बस कोई डेकोरेशन पीस हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, गुस्से और दुख की मिलीजुली चमक। मान, मर्यादा, परिवार, इन तीन शब्दों के नाम पर जो घुटन दी जाती है उसका हिसाब कौन देगा रिया? रिया के होंठ हिले, शायद कुछ कहने को, लेकिन अनन्या ने आगे बोलना जारी रखा। तुमने कभी नोटिस किया है जब कोई लड़की चुप रहती है लोग मान लेते हैं कि वो गलत नहीं करना चाहती, पर सच ये होता है कि उसके पास करने की छूट ही नहीं होती। एक लंबा सन्नाटा। कमरे की दीवारें, वो पलंग, वो खिड़की, सब जैसे एक साथ मौन हो गए थे। रिया ने थोड़ी देर बाद धीरे से पूछा, तुम्हें डर लगता है वहां जाने से? अनन्या हंसी, फीकी हंसी, वो हंसी जो आंसुओं के करीब होती है। डर? उसने कहा, डर तो अब नहीं लगता, अब सिर्फ गुस्सा आता है और थकान, जैसे बार बार किसी बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की हो जो कभी खुलना ही नहीं था। फिर वो धीरे से फर्श पर बैठ गई, अपने घुटनों को गले से लगाकर। डिनर? उसने दोहराया, जैसे कोई जोक सुनाया जा रहा हो। डिनर तो दूर में, वहां सांस भी नहीं लेना चाहती, वहां की हवा भी जैसे जज करती है, ये क्यों पहना, ऐसे क्यों आई, इतनी देर क्यों हो गई? रिया अब तक चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। कभी कभी लगता है, अनन्या ने फर्श पर पड़ी किताब की तरफ देखा, काश मैं कुछ महीनों की छुट्टी ले पाती, खुद से, अपने नाम, रिश्तों, उम्मीदों, सब कुछ से। उसने धीरे से सिर दीवार के पास रखे तकिए पर टिकाया। दीवार ठंडी थी, लेकिन उसमें एक सुकून था जो किसी इंसान के स्पर्श में नहीं होता। रिया? आज बस कोई बात मत करना, मुझे किसी चेहरे से नहीं मिलना, किसी रिश्ते में खुद को घोलना नहीं है, आज बस मुझे नींद चाहिए। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, उठी, कमरे की लाइट थोड़ी धीमी की और पास आकर एक पतला कंबल अनन्या के ऊपर डाल दिया। फिर धीरे से फुसफुसाई, ठीक है, सो जाओ, मैं यहीं हूँ। अनन्या की पलकों पर जैसे कुछ भारीपन उतर आया। कमरे की दीवारें अब फिर से चुप थीं, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी बोझिल नहीं थी बल्कि थोड़ी समझदार लग रही थी। और बाहर खिड़की के पार शाम अब रात में बदल रही थी, धीरे, स्थिर और बेहद पुरानी, जैसे अनन्या की थकावट।